आज है 10 जून दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। सेना के अनुसार म्यांमार में किए गए सैन्य अभियान में कम से कम 20 सशस्त्र चरमपंथी मारे गए। क्या ये एक मजबूत कार्रवाई है?
ये एक पावर प्रोजेक्शन का भी खेल है और जिसकी अब जरूरत भी आ गई थी, क्योंकि आफ्टर ऑल कब तक आप इस तरह की हरकतों को टॉलरेट कर सकते हैं।
तो पाकिस्तान ने की इस अभियान की निंदा। जितेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद कपिल मिश्रा बने दिल्ली के नए कानून मंत्री। अमेरिका और यूरोपीय देशों की रूस से तनातनी क्या दुनिया को एक और शीत युद्ध की ओर ले जा रही है?
अगर कहीं कोल्ड वॉर होगी तो कोल्ड वॉर अमेरिका और चीन के बीच में होगी, कोल्ड वॉर अमेरिका और रूस के बीच में नहीं होगी।
सुनेंगे दुनिया जहां, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार शालू यादव से। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में की गई सैन्य कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आ रही है। भारतीय सेना का कहना है कि इलीट फोर्सेस ने पड़ोसी देश म्यांमार में दो कैंपों पर निशाना साधा और इस ऑपरेशन में कम से कम 20 चरमपंथी मारे गए हैं। हालांकि भारतीय सेना उत्तरी पूर्व राज्यों में कई दशकों से चरमपंथ का सामना करती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब म्यांमार के भीतर जाकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस बीच म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सू ची चीन की पहली यात्रा पर जा रही हैं। वे अपनी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग से मुलाकात करेंगी। चीन और म्यांमार के सैन्य शासकों के बीच कई वर्षों तक बहुत अच्छे संबंध रह चुके हैं, लेकिन संवाददाताओं का कहना है कि बर्मा में सैन्य शासन खत्म होने के बाद से वहां चीन का दबदबा कम हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हॉन्ग ली ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने म्यांमार की विभिन्न पार्टियों के साथ लंबी दोस्ती कायम की है। हमें उम्मीद है कि आंग सान सू ची की यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसा और आपसी समझ गहरी होगी और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग भी बढ़ेगा। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हॉन्ग ली के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इराक में अमरीकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर सहमति देने का विचार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे सरकारी सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए अमरीकी सैनिकों को वहां भेजा जा सकता है। कुछ अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि ओबामा 500 अतिरिक्त सैनिकों को वहां भेजने पर विचार कर रहे हैं और साथ ही इराक के अनबार प्रांत में एक नया ट्रेनिंग बेस बनाने की योजना कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच का पहला दिन आज बांग्लादेश के फतुल्ला स्टेडियम में खेला गया और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 239 रन बनाए, जिसमें से शिखर धवन ने 150 रनों का योगदान दिया। मुरली विजय और शिखर धवन अभी भी पिच पर बने हुए हैं। फीफा के महासचिव जिरोम वेल्की ने कहा है कि फुटबॉल के दूसरे टूर्नामेंट्स में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अब 2026 के फुटबॉल विश्व कप के लिए होने वाली बिडिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। जिरोम ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब अमरीकी अभियुक्तों ने फीफा के कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस में 2018 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप योजना के मुताबिक आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान में उस अभियुक्त को फांसी लगा दी गई है जिस पर 15 साल की उम्र में कत्ल का इल्जाम लगा था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना की म्यांमार में हुई कार्रवाई की। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, भारतीय सेना का कहना है कि म्यांमार में हुई कार्रवाई में कम से कम 20 सशस्त्र चरमपंथी मारे गए हैं। सेना ने दो कैंपों पर हमला बोला था। सेना का कहना है कि पिछले हफ्ते चरमपंथियों के हमले में 18 सैनिक मारे गए हैं और ये हमला उसी की जवाबी कार्रवाई था। उधर केंद्र सरकार ने म्यांमार में हुई सैन्य कार्रवाई को निर्णायक बताया है। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
भारतीय सेना के अपने एक अभियान में म्यांमार की सीमा के भीतर जाकर चरमपंथियों के दो कैंप नष्ट कर देने की खबर को सरकार और सेना की ओर से पुष्ट किया गया है। सरकारी समाचार चैनल डीडी न्यूज से बात करते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि सेना ने चरमपंथियों के दो शिविर तबाह कर दिए।
सेना को पीछा करने का आदेश दिया गया और इंटेलिजेंस गैदर करके ये पता चला कि दो ऐसे कैंप हैं जहां पर शायद आतंकवादी फिर इकट्ठे हो रहे हैं एक नया हमला करने के। उन दोनों कैंपों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है।
राठौर ने इस कार्रवाई को उन चरमपंथियों के लिए एक संदेश बताया है जो कि भारत की सीमा के पार से भारत के खिलाफ अभियान चलाते हैं। उन्होंने सेना के इस ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस अभियान के लिए सेना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ऐसे अभियानों के बारे में ज्यादा चर्चा किया जाना जरूरी नहीं है।
हमारा देश के ऊपर में जो हमला हुआ उसका एक जवाब हुआ, उसका जो पूरा बिल्कुल जो विषय को बहुत विस्तार से चर्चा करना सही नहीं होगा, मैं ऐसे मानता हूँ। हम लोग को इसको सैल्यूट करना चाहिए, सेना के जवानों को और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये प्रक्रिया है, बहुत बड़ा इसमें एक कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता होता है, ये मिलजुल के करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि देश हित में जब कोई काम करता है तो उसको हम लोग सब मिल करके एकजुट होकर के उसको समझना चाहिए और उसको ज्यादा विस्तार से चर्चा भी नहीं करना चाहिए।
इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वह इस ऑपरेशन के दौरान म्यांमार के संपर्क में थी। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में कम से कम 20 चरमपंथियों के मारे जाने की खबर है। मणिपुर के चंदेल में 4 जून को चरमपंथियों ने घात लगाकर भारतीय सेना के एक काफिले पर हमला किया था जिसमें 18 सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना का ये ऑपरेशन इसी हमले की जवाबी कार्रवाई के बतौर था।
तो जैसा कि आपने रोहित जोशी की रिपोर्ट में सुना, सरकार कह रही है कि ये देश पर किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई है और इससे ज्यादा इस पर वे जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। उधर सेना भी अभियान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। मैंने पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबीर भौमिक को फोन कर इस तरह के अभियान के बारे में जानकारी मांगी।
जो हमारे फौज के 21 नंबर पैरा कमांडो रेजिमेंट है उन्होंने ये हमला बोला है, एक ही साथ दो अलग अलग जगह हमला। मणिपुर के सीमावर्ती इलाका चसात के उल्टा साइड में जो KYKL का एक कैंप है हमला बोला गया है, और जो NSCN कपलांग गुट का कैंप है भारत के नागालैंड के त्वेंगसांग जिले के जो नौकलाक है उसके ऑपोजिट में ये दो जगह स्ट्राइक किए गए हैं। ये दोनों जो है कैंप, ये छोटे छोटे छापामार कैंप है, इनको ट्रांजिट यानी कि बर्मा के बहुत ही अंदर जो बड़े कैंप है छापामारों के, वहां से जब कोई छापामार गुट भारतीय भूमि पर कार्रवाई करने के लिए आती है तो ये ट्रांजिट कैंप हुई। तो ये कैंप्स में बहुत ज्यादा लोग किसी एक वक्त नहीं होते। अगर कोई बहुत बड़ा के लिए भारत में घुसने को तैयार हो रहा है तो शायद हो सकता है, बट आम तौर पे क्योंकि हम ये सब जगह जा चुके हैं, घूम चुके हैं छापामारों के साथ, ये जो ट्रांजिट कैंप्स हैं जो सीमा पर होते हैं इन पर ज्यादा से ज्यादा 10 12 15 लोग से ज्यादा कभी एक वक्त नहीं होते। अब जहां तक संख्या की बात है, इस हमले के दौरान कोई फौज जो है ना वो कोई काउंटिंग करने के लिए वहां नहीं रुकता है क्योंकि ये सरप्राइज रेड है, और ये सरप्राइज रेड तभी कामयाब होता है जबकि सरप्राइज रहते आपने ऑपरेशन किया और आप वहां से निकलकर आ गए। वहां कोई कितने लोगों ने मारा डेड बॉडी का काउंट लेने के लिए ये सब कमांडोज वहां नहीं बैठ और ये करके निकल जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई डेफिनेट नहीं है कि कितना बड़ा हमला था, कितना देर वो हमला टिका, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए। हालांकि ये सुनने में आ रहा है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड वगैरह हथियार इस्तेमाल किए गए जिससे कि उन छावनियों में जो हट्स हैं उसको आग लग गया, बट इसमें कोई आंकड़ा ठोस देना अभी नामुमकिन है।
जी, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि म्यांमार और जो है भारत के बहुत ही मजबूत संबंध हैं और दोनों देशों की सेना एक दूसरे को सहयोग भी करती हैं। वहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि म्यांमार को इस ऑपरेशन के अभियान के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो क्या इस तरह से जो रेड मारी गई है जैसे हॉट परस्यूट बोला जा रहा है, धावा बोलना कहा जा रहा है, इस तरह की अभियान संभव है बिना जानकारी के?
बिल्कुल संभव है, क्योंकि हॉट परस्यूट का मतलब ये है कि आप धावा बोल रहे हो, आप किसी का पीछा कर रहे हो, कोई छापामार गुट जिसने आप पर हमला किया है तो उसके चलते आप दूसरे मुल्क के इलाके में आप घुस गए हैं, परस्यूट का मतलब तो यही है। हालांकि ये ऑपरेशन प्लान्ड ऑपरेशन है और ये टिपिकल हॉट परस्यूट नहीं है, बट इसको हॉट परस्यूट दिखाया जा रहा है। बर्मा को जो बताया गया है, हमारे वहाँ जो राजदूत हैं गौतम मुखोपाध्याय फॉरेन मिनिस्ट्री में, उन्होंने बर्मिस फॉरेन मिनिस्ट्री को औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है, और वहाँ कहा गया है कि हॉट परस्यूट। अब ये हॉट परस्यूट के भारत और म्यांमार के बीच, दोनों मुल्कों के बीच, फौज के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है कि साहब आपके वहां भी काफी सारे छापामार गुट सक्रिय हैं, उन पर आप उनको जब आप उनके पीछे धावा बोल रहे हो, अगर वो हिंदुस्तान के इलाके में घुस जाते हैं, और इससे पहले हादसे हुए हैं कि इस तरह के छापामार चीन या अराकानी छापामार ये घुस आए हैं भारत के मणिपुर या मिजोरम राज्य में, उसके पीछे बर्मा की फौज जो है धावा बोलकर इंडियन टेरिटरी में वो घुस आए और इस तरह के झड़पे हुए हैं। तो तब इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको लेकर बड़ा हल्ला कुछ नहीं किया, अब तो कि बर्मा भी नहीं करेगी। एक चीज जरूर है सुशीला कि तालुकात मजबूत है, पर भारत को एक बात की नाराजगी है कि भूटान और बांग्लादेश ने जिस तरह के ठोस कार्रवाई किए हैं भारत विरोधी छापामारों के खिलाफ और उनको खदेड़ निकाला है उनको पकड़ा है, हमारे हवाले किए हैं, बर्मा ने इस तरह का कार्रवाई नहीं किया।
ये थे पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबीर भौमिक। कल सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने इस सैन्य अभियान की मंजूरी दी थी और सरकार ने इसे ऐतिहासिक अभियान बताया है। तो क्या ये सरकार की तरफ से मजबूती से उठाया गया कदम है? हमारे सहयोगी सलमान रावी ने रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से इस बारे में बात की।
नई नीति की शुरुआत एक लिहाज से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो हमला हुआ इससे पहले भी जॉइंट ऑपरेशन जरूर हुए और इसी क्षेत्र में हुए, लेकिन ये जो हमला हुआ ये एक लिहाज से यूनिलैटरल हमला था। इससे पहले जॉइंट ऑपरेशंस होते थे, बेशक उसमें कार्रवाई सिर्फ आप ही लोग करते थे, लेकिन आप पहले से इजाजत लेकर वो ऑपरेशंस किया करते थे म्यांमार में। इस बार आपने वो किया जो नॉर्मली अमरीकी करते हैं। दूसरी चीज ये कि शायद ये एक संकेत दिया जा रहा है कि अगर इस तरह का हमला होगा जो नाकाबिले बर्दाश्त है तो फिर उसका एक रिएक्शन आएगा भारत द्वारा। अब वो किस तरह का रिएक्शन होगा, इस पर्टिकुलर केस में स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया क्योंकि शायद वो सर्कमस्टांसेस और जो सिचुएशन थी वो अलाउ करती थी, किसी और केस में और आपके पास बहुत सारे।
मैं ये जानना चाह रहा था सरीन साहब आपसे कि क्या इस तरह की हिस्ट्री रही है कि यूनिलैटरली जाकर कहीं इस तरह से घुसकर और फिर कार्रवाई करके फौज वापस लौटी है?
हुआ तो है, कश्मीर में हुआ है, लेकिन जनरली उसको आप अक्नॉलेज नहीं करते थे।
लेकिन ये इंटरनेशनल उस पर किस तरह के सिग्नल्स हैं? ये
देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज और ये सारा कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है इस पे मेरी सोवरेनिटी है और आप एंटर नहीं कर सकते, तो फिर आपकी सोवरेनिटी ये भी डिमांड करती है कि आप उस क्षेत्र से भारत के ऊपर अगर किसी तरीके का हमला होता है तो उसको रोकें, और अगर आप उसमें रोकने में सक्षम नहीं हैं तो फिर मेरे ख्याल ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे।
क्या इससे एक ये इशारा पाकिस्तान को भी और चाइना को भी एक सिग्नल देने की कोशिश की गई भारत द्वारा?
देखिए, चीन ने अभी कोई डायरेक्टली भारत के खिलाफ कोई इस तरह की हरकत की हो अभी तो नहीं, पिछले 25-30 साल में तो ऐसा कोई वो नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर इस तरह की हरकतें हुई हैं। अब ये नहीं पता कि क्या यही पॉलिसी पाकिस्तान के ऊपर भी अप्लाई करेगी या नहीं, लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं सरकार द्वारा और सीनियर मंत्रियों द्वारा, उससे ये लगता है कि ये अब एक तरीके का एक नया टेम्पलेट बन रहा है। लेकिन क्या हर एक में आप स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ करते थे और सिचुएशन ऐसी थी, आपके पास इंटेलिजेंस ऐसी थी कि आप एक बहुत वेल टारगेटेड ऑपरेशन और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते थे। और जगहों पे हो सकता है कि इस तरह का ऑपरेशन नहीं लेकिन उसका कोई और स्वरूप हो सकता है। अब वो क्या स्वरूप है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं किसी भी फौज के पास।
आपको याद होगा 2007 में जब उल्फा ने हिंदी भाषियों को मारना शुरू किया था, तो उस वक्त में ऑपरेशन रीनो नाम से एक अभियान चलाया गया था जिसमें पहली बार एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था उल्फा के ठिकानों पर, और वो भी बॉर्डर के इलाकों में था। तो क्या ये इससे पहले ये कर चुका है भारत?
नहीं, इससे पहले कई बार ही हो चुका है, एक भूटान में भी हुआ है, भूटान में भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे। खैर, उसमें भूटनीज आर्मी जो थी वो भी इन्वॉल्व थी और उन्होंने भी काफ़ी भारत की मदद की थी उसमें। जो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो नई बात है वो ये है कि ये कोई जॉइंट ऑपरेशन नहीं था, ये एक लिहाज से आपने पावर प्रोजेक्शन की। बाकी जहां इंटरनेशनल ओपिनियन का सवाल है, मेरे ख्याल अमेरिका से तो कोई नहीं पूछता कि भाई आपने यहां पर जाके क्यों किया, कैसे किया, तो मेरे ख्याल ये एक पावर प्रोजेक्शन का भी खेल है और जिसकी अब ज़रूरत भी आ गई थी, क्योंकि आफ्टरऑल कब तक आप इस तरह की हरकतों को टॉलरेट कर सकते।
रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से बात कर रहे थे सलमान रावी। उधर पाकिस्तान की सरकार और सेना ने भारतीय सेना की तरफ से म्यांमार में की गई कार्रवाई को अफसोसजनक बताते हुए इसकी निंदा की है। सरकार का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। मैंने अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद फोन कर बीबीसी के आसिफ फारूकी से इस बारे में और जानकारी मांगी।
पाकिस्तानी सेना का आज जो बड़े अफसर हैं, उनकी फॉर्मेशन कमांडर्स कहते हैं, उनकी आज मीटिंग हुई थी रावलपिंडी में, जिसके बाद एक स्टेटमेंट इशू हुआ है। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो न सिर्फ ये कि यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रही है, बल्कि उसको प्राउड भी फील कर रही है और उसके बारे में दूसरे मुल्कों के अंदर इंटरफेयर करने का पर फख्र भी महसूस कर रही है। और सेना का ये कहना था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और इसका भरपूर तौर पर जवाब दिया जाएगा। और फौज, पाकिस्तानी सेना ने यह भी कहा है कि अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की टेरिटरी के खिलाफ कोई वायलेशन होती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की चर्चाएं हैं जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है म्यांमार में उसे लेकर?
पाकिस्तानी मीडिया में आज सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि भारतीय मिनिस्टर जो हैं राज्यवर्धन राठौर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जैसा कि इंडिया ने म्यांमार में कार्रवाई की है, अगर पाकिस्तान और दूसरे जो मुल्क जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखते हैं, ये उनके लिए भी वार्निंग है। तो इस पर सुबह से पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है। उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन था सुबह, उसमें एमपीज ने, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्होंने इस पर बहुत बात की और फोर्स किया फॉरेन मिनिस्टर को कि वो इस पे रिएक्शन दें। उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत धुआंधार इस पर बयान दिया और चौधरी निसार अली खान ने यह कहा कि इंडिया को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान जो है वो म्यांमार नहीं है और जिस तरह से वो म्यांमार में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान में उन्होंने इस तरह का कुछ सोचा तो उसकी भरपूर जवाब दिया जाएगा और किसी भी मिस एडवेंचर के लिए पाकिस्तान तैयार है और उसके जवाब में इंडिया जो है उसका खुद नुकसान होगा, पाकिस्तान जो है वो इस तरह के बयान जो है उससे डरेगा नहीं। इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना हलफ लिया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो नवाज शरीफ उसमें गए थे और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसकी जवाब में नरेंद्र मोदी जो है उनकी तरफ से दुश्मनी की जा रही है पाकिस्तान के साथ।
ये थे इस्लामाबाद से बीबीसी के आसिफ फारूकी। और अब बात आम आदमी पार्टी की। जितेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा को नए कानून मंत्री बनाया है। जितेंद्र सिंह फर्जी डिग्री मामले में पुलिस हिरासत में हैं। कपिल मिश्रा को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी भी माना जाता है। और जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव स्टूडियो में है दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, क्या खबर है?
जी, आज दिल्ली पुलिस दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद पहुंची, जहां के विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री लेने का दावा किया था। फर्जी डिग्री मामले में कल गिरफ्तार किए गए जितेंद्र सिंह तोमर 4 दिन की दिल्ली पुलिस के रिमांड पर हैं। आज के वकीलों ने दिल्ली सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका भी दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई नहीं हुई है, यानी फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है। वहीं दिल्ली पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं ये फर्जी डिग्री का मामला किसी बड़े रैकेट का हिस्सा तो नहीं है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने पत्रकारों से कहा,
ये डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज्ड है। नंबर वन, अगर ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है तो ये किसने बनाए? क्या ये खुद बनाए गए या किसी से प्रोक्योर किए गए? अगर खुद बनाए गए, क्या ये सिर्फ अपने लिए बनाए गए? तो ये जानकारी लेना बड़ा आवश्यक होगा। इसी प्रकार से अगर किसी से प्रोक्योर किए गए हैं तो ये पता करना आवश्यक होगा कि क्या उस व्यक्ति, पहले तो उस व्यक्ति को हमें आइडेंटिफाई करना होगा जिससे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर किए गए, और फिर ये भी जानना आवश्यक होगा कि वो जो रैकेटियर है उसने ये रैकेट कब से चला रखा था।
वहीं आम आदमी पार्टी के 34 वर्षीय विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्र को दिल्ली का नया कानून मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जैसा आपने बताया अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी हैं। दूसरी ओर दिल्ली के एक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती नए विवाद में फंस गए हैं। उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन बरखा सिंह ने मीडिया को बताया,
जब से उनकी शादी हुई है 2010 से, तब से लगातार मार पिटाई, और आपने जिस तरह की देखा उनके हालात भी, मार पिटाई ये सब उनके साथ होती रही। उनके 2 बच्चे हैं, बच्चों को हैरेस किया जाता है।
सोमनाथ भारती फिलहाल केरल में है, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां गए हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि मीडिया में रिपोर्टें हैं कि उनका ये कहना है कि उनकी बीवी से संबंध मधुर बने हुए हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए दिलनवाज आपका। और अब समय है दुनिया जहान का। यूक्रेन की अशांति के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हुए G7 देशों की बैठक में भी रूस का मुद्दा ही छाया रहा, मगर रूस झुकने को तैयार नहीं। हालात तो ये हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मजबूत इरादों पर सवार सोवियत देश अपनी हुंकारों और चीन जैसे देशों से दोस्ती मजबूत कर यूरोपीय देशों को आशंकित कर रहा है। कहीं दुनिया एक और शीत युद्ध के कगार पर तो नहीं? दुनिया जहां में आज इन्हीं आशंकाओं की पड़ताल कर रहे हैं निखिल रंजन।
दुनिया जहान, तारीख 9 मई साल 2015 और जगह मॉस्को का रेड स्क्वायर।
Парад под государственный флаг Российской Федерации।
सैनिक कमांडर की आवाज गूंजी और रूसी सेना का लश्कर क्रेमलिन की दीवारों से लगती सड़क पर फौजी बूटों और टैंकों के पहियों पर चलता मंच के सामने से गुजरने लगा। मंच पर मौजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब 5 लाख सैनिकों के इस विशाल परेड की सलामी ली, तब उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया भर के कई बड़े नेता मौजूद थे। इन नेताओं के जहन से पिछला शीत युद्ध तो अब शायद निकल चुका है, लेकिन अगले शीत युद्ध की आशंकाएं मंडरा रही हैं। इस नए शीत युद्ध का कारण हो सकता है वो तनाव जो काफी समय से रूस और पश्चिमी देशों के बीच दिखाई दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनके वाक युद्ध का मैदान जंग बना है। लंदन के किंग्स कॉलेज में डिफेंस स्टडीज के प्रोफेसर हर्ष विपंत,
देखिए बनती तो नजर आ रही है, लेकिन सबसे इसमें जो एक बदलाव ये है कि रूस कुछ भी कहे, रूस की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस तरह के मिलिट्री एक्सपेंडिचर को और इस तरह की मिलिट्री जो एक असर्टिवनेस को जस्टिफाई नहीं करता है। तो अगर कहीं कोल्ड वॉर होगी तो कोल्ड वॉर अमरीका और चीन के बीच में होगी, कोल्ड वॉर अमरीका और रूस के बीच में नहीं होगी। जिस तरह से रूस और चीन के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं तो वहां पर दो कैंप बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो लीडिंग रोल होगा वो चीन का होगा, लीडिंग रोल रूस का नहीं होगा।
यूक्रेन की अशांति में रूस का हाथ नहीं है, ये मानना यूरोप और अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। ताकतवर देशों के गुट G8 का G7 हो जाना रूस के इन्हीं कदमों का नतीजा था। प्रोफेसर हर्ष विपंत,
एक तो ये है कि रूस की जो एक आक्रामक फॉरेन पॉलिसी हुई है कुछ सालों से, उसको लेकर थोड़ी सी यूरोपियन कंट्रीज में परेशानी चल रही, क्योंकि एक तो उनको ये एहसास नहीं था कि रूस इतनी दूर तक चला जाएगा। सारी कंट्रीज जो हैं, जो कि अभी आप चाहे ब्रिटेन देखें या जर्मनी देखें, वो भी काफी परेशान है, क्योंकि सब लोग ये मान रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जबकि यूरोपियन इकोनॉमी काफी सफर कर रही है सैंक्शंस के द्वारा, रशिया इतनी दूर तक नहीं जाएगा, वो कंसेंसस टूट रहा है।
सोवियत संघ के टूटने के साथ रूस के हालात बिगड़े, वो दुनिया से लंबे समय तक अलग थलग पड़ा रहा, लेकिन फिर लगने लगा कि रूस और पश्चिम के बीच भरोसा बढ़ रहा है। यूरोप में तैनात अमरीकी मिसाइल हटाने की बात होने लगी, पुतिन और ओबामा की मुस्कुराती तस्वीरें दिखने लगी, लेकिन इसी बीच पुतिन की ताकत भी बढ़ती गई और बीच बीच में अलग अलग मुद्दों पर सहयोग के साथ ही टकराव की गूंज भी सुनाई देने लगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रूसी मामलों की जानकार प्रोफेसर अनुराधा शेनॉय,
पहले तो कुछ समझौते भी हुए हैं और पूरी इंटरनेशनल स्थिति बदल गई है, लेकिन जो वो मिलिटराइजेशन थी और जो एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच, उस तरीके की नहीं, पर उससे थोड़ा कम नजर आ रही है और लग रहा है कि ये फिर से जो पाश्चात्य देश हैं वो चाहते हैं कि वो रूस को पूरा एनसर्कल कर लें, उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करें, जो संभव नहीं है, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बहुत अहम देता है।
मास्को की परेड में जो लोग नहीं थे उनके मन में यहाँ की तस्वीरें देख भारी उथल पुथल मची है। इनमें अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल भी थीं। ब्रिटेन ने कहा है कि वो परमाणु मिसाइलों की फिर से तैनाती के बारे में विचार कर रहा है। ब्रिटेन की वायु सीमा में रूसी लड़ाकू विमान देखे गए, स्वीडन और नॉर्वे में रूसी पनडुब्बियां दिखी। इन सब बातों से लगता है जैसे यूरोप में रूसी हमले का डर हो, हालांकि खुद पुतिन ने इससे इनकार किया है। 15 साल पहले सत्ता में आए पुतिन की ताकत रूस में लगातार बढ़ी है। अमरीकी पत्रिका ने तो उन्हें इस साल दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताया है। सत्ता में बने रहने के पुतिन के तौर तरीके और उनकी दबंग छवि अक्सर उन्हें खबरों में बनाए रखती है। तो क्या रूस, यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ पुतिन की निजी महत्वाकांक्षा का नतीजा है? अनुराधा शेनॉय,
पुतिन यूक्रेन ऑटोक्रेटिक है, ये तो सही बात है, क्योंकि रूस में डेमोक्रेटिक डेफिसिट शुरू से ही है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर ही नहीं है, पॉलिटिकल कल्चर ही किसी और तरह की है, लेकिन उसके पीछे राष्ट्रीयता भी है, नेशनलिस्ट फोर्सेस भी हैं, और कोई विकल्प भी नहीं है। तो दोनों चीजें सच है, पर दोनों चीजें जुड़ी हुई नहीं है एसेंशियली। अगर डेमोक्रेटिक भी था फिर भी वो लोग मिलके रूस के लिए और यूक्रेन के लिए लड़ते।
रूस की स्थिति इस मामले में थोड़ी संदिग्ध जरूर दिखती है, लेकिन पश्चिमी देशों और अमेरिका का रुख भी बहुतों को एकदम ठीक नहीं लग रहा। यूरोप की सख्ती में इन आशंकाओं को मजबूती मिल रही है कि अमेरिका रूस की घेरेबंदी कर उसे फिर से अलग थलग करना चाहता है। यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार का सत्ता से हटना, चुनाव के बाद नई सरकार को अमेरिका की ओर से मिसाइल तैनाती के लिए भारी मदद दिया जाना, ये तो सबके सामने है, पर बहुत कुछ इसके पीछे भी है।
सिर्फ एक तरफ से तो ये बात हो नहीं सकती, यूक्रेन आखिर में सोवियत संघ का पार्ट था। हाँ सही है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उसके कई ऐसे भाग थे इतिहास में जो रूस के साथ थे, और वहाँ के जो लोग हैं वो रूस के साथ हैं। तो जब पाश्चात्य देशों ने वहाँ पे हस्तक्षेप किया, पहले तो यूक्रेन की सरकार प्रो रशियन थी, उनपे निर्भर थी गैस के लिए, एनर्जी के लिए, और जब उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको नेटो का मेंबर बना लेंगे, यूरोपियन यूनियन में दाखिला दे देंगे, तो कुछ लोग थे जो कुछ हिस्सों में थे, उनका कहना था कि यूक्रेन की जो अंदरूनी पॉलिसीज थी वो भी अपने पूरे सिटीजन्स के साथ नहीं थी, जो रूसी नस्ल के लोग थे उनके खिलाफ थी, तो इन लोगों ने कहा कि हम रूस के साथ रहेंगे।
दुनिया में 21वीं सदी में जंग सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जा रही, आर्थिक प्रतिबंध भी ताकतवर देशों के लिए बड़ा हथियार है। शीत युद्ध के कारण बारूद का धुआं भले ही हवा में ना घुले, लेकिन जहां तक ये तनाव पहुंचेगा वहां सांस लेने में तकलीफ तो जरूर होगी। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
और अब सुन लेते हैं खेल समाचार इंदु पांडे से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। आज बांग्लादेश और भारत के बीच में टेस्ट मैच खेला गया खान साहब उस्मान अली स्टेडियम में, जहां भारत ने बिना कोई विकेट खोए 239 रन बना लिए। विजय मुरली और शिखर धवन पिच पर बने हुए हैं। विजय धैया जी, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि एक कमजोर टीम के सामने शिखर धवन ने 150 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया हो?
तरीके से खेले वो एक इस तरीके का आगाज आपको देता है कि भारतीय टीम अब यहां से अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली कि 5 गेंद के साथ उतरे, तो आपकी मानसिकता ये है कि आप चाहते हैं कि जो टेस्ट मैचेस आप खेलें उनमें निर्णय की तरफ जाएं, और ये एक अग्रेसिव शुरुआत है।
और मुरली विजय, शिखर धवन की जो पार्टनरशिप रही आज की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
शानदार साझेदारी की। जो लास्ट टेस्ट मैच भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में खेली थी उसमें शिखर धवन टीम से बाहर थे और केएल राहुल ने 100 जमाया था, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था इस मिले हुए मौके का फायदा उठाने के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, अब जब भी अगला टेस्ट मैच होगा केएल राहुल को इंतजार करना पड़ेगा कि वो कब वापस 11 में आए। मुरली विजय, उनका शानदार प्रदर्शन था ऑस्ट्रेलिया में और उसको उन्होंने लगातार कायम रखा है। साझेदारी के अंदर अपना किरदार समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज पारी की शुरुआत में बहुत ज्यादा आक्रामक रूप में दिख रहे शिखर धवन, तो चुपचाप से बैकफुट पे चुपचाप दिखे मुरली विजय, और जब उनको लगा कि आप बिल्कुल सेट हो गए हैं, आप वो अपनी जो स्टार्ट उनको मिला था उसका फायदा उठा सकते हैं, तो वो भी एक आक्रामक रूप में दिखाई दिए। और किसी भी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर बनाने में अगर आपकी शुरुआत अच्छी रहती है तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अभी आप देखें 200 से ज्यादा रन बन चुके हैं, विकेट कोई गवाया ही नहीं है, तो कल आप आके जिस तरीके से गेम को चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। आप कभी भी आक्रामक रुख एक अख्तियार कर सकते हैं, रन रेट 4.5 से ऊपर की है उसको बरकरार रख सकते हैं।
तो ये थे खेल समाचार और सुना रही थी इंदु पांडे। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारतीय सेना ने कहा है कि उसकी इलीट फोर्सेज ने पड़ोसी देश म्यांमार में 2 कैंपों पर निशाना साधा और इस ऑपरेशन में कम से कम 20 चरमपंथी मारे गए हैं। इस बीच म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सू ची अपनी चीन की पहली यात्रा पर जा रही हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इराक में अमरीकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर सहमति देने का विचार कर रहे हैं। फीफा के महासचिव जेरोम वेल्की ने कहा है कि फुटबॉल के दूसरे टूर्नामेंट्स में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अब 2026 के विश्व कप के लिए होने वाली बिडिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। मिस्र में सैलानियों के बीच लोकप्रिय शहर लक्ज़र में एक आत्मघाती हमला हुआ है, हालांकि इसमें किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी शालू यादव। इसी के साथ दिन भर के इस अंक में अभी बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।